आज कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का जयंती आविर्भाव दिन। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में वो क्यों अवतरित होते हैं इसके विषय में बताए हैं। तो पहले हम उस श्लोक को देखेंगे और फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान कहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य इस प्रकार दिया है, छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वासपूर्व समझना चाहिए, यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है। जैसा कि वेदों पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी हृद्यंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्त्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा श्रद्धालु भक्त भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद 3.8। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहितु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आगे जो सब बच्चे बैठे हैं, ड्रामे में आधा घंटा है, ठीक है, आधा घंटा चुप बैठो, ठीक, बात नहीं करने का। हाँ, तो हम घर में अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के भी जन्मदिन मनाते हैं, और ये कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं, तो इतना धूमधाम से मनाते हैं, तो समझना चाहिए कि क्यों, इसकी क्या विशेषता है। कई लोग सोचते हैं कि आखिर भगवान अवतरित क्यों होते हैं, क्यों आते हैं, और कई तो ऐसा प्रश्न करते हैं कि भगवान यहां आते ही नहीं है, क्यों आएंगे यहां, क्या करना है हमको यहां आकर के। तो भगवान यहां क्यों आते हैं, अवतरित क्यों होते हैं, हम कहते हैं अवतरण, भगवान अपने धाम से यहां आते हैं, तो क्या पड़ी है उनको यहां आने की, उसका उत्तर यहां भगवान दे रहे हैं। भगवान हमारे लिए आए हैं और आते रहते हैं। ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार भगवान अवतरित होते हैं, स्वयं श्री कृष्ण, और अन्य अपने अवतारों के रूप में आते रहते हैं, अनगिनत अवतार हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं अवतरित होते हैं भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का यही अर्थ है, सर्वोपरि। हम सब मनुष्य हैं, सभी में जो सबसे ऊपर है वो भगवान है, और वो श्री कृष्ण है। तो भगवान यहां इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान यहां कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और मेरे कर्म के रहस्य को यथारूप समझ लेता है, उसका परिणाम यह होगा कि वो ये देह समाप्त होने पर पुनर्जन्म उसका नहीं होगा इस भौतिक जगत में, वो भगवत धाम जाएगा। तो हमें क्या जरूरत है भगवत धाम जाने की, आप सोचेंगे, अच्छे तो है यहां पर, भगवत धाम जाए क्या करना है। तो इस भौतिक जगत में सुखी होने का केवल एक भ्रम है, इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, दुखालयम अशाश्वतम भगवान कहे हैं, और इसको हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। अगर जानवर जैसी बुद्धि नहीं है, जानवर दुखी होता है लेकिन समझ नहीं सकता है, अगर मनुष्य हैं तो हम ये स्पष्ट रूप से जान सकते हैं, देख सकते हैं कि हर व्यक्ति इस जगत में पीड़ित है उसकी इच्छा के विरुद्ध। और सबसे बड़े जो दुख बताए गए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार हमको जन्म होता है, बाबा मरना पड़ता है, हम कुछ भी काम करते हैं वो थोड़े से हम खत्म हो जाता है, हम जिस भी स्थिति को प्राप्त करते हैं वो स्थिति बदल जाती है। आज आपको एक चीज में आनंद मिलता है, कल को उसी चीज में आपको बोरियत होती है, फिर आप कोई दूसरी चीज लेते हैं उसको अपनाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद उसमें बोरियत होती है। इस तरीके से हम आनंद की खोज में हैं लेकिन मिलता है केवल दुख। तो इसलिए हर बुद्धिमान व्यक्ति को यह प्रश्न करना चाहिए कि ये जन्म और मृत्यु का चक्र आखिर कहां जाके रुकेगा, मुझे क्यों अपनी इच्छा के विरुद्ध बूढ़ा होना पड़ता है, क्यों अपनी इच्छा के विरुद्ध बीमार होना पड़ता है, क्या इसका समाधान है। और ये ऐसे ही जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, और फिर दोबारा जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, तो पूरा जीवन भर जो कठिन परिश्रम किया उसका क्या, किस लिए, वो व्यर्थ। ये प्रश्न हम सबके दिमाग में आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इन सब प्रश्नों का उत्तर और हमें सही मार्ग दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। तो वास्तव में जो वर्तमान हम लोग जीवन जी रहे हैं वो एक कैद खाने की तरह से है, हम सभी कैदी की तरह से हैं, और स्वाभाविक है कि कैद खाने में दंड भुगतना पड़ता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि इत्यादि, ये सब दंड हैं जो हम भुगत रहे हैं। कारण हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य है, इसको भूल गए हैं, और इस भौतिक जगत को भोग करने की वृत्ति से यहां आए हैं, ये भूल करके कि हम भोगता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण भोगता है। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन उनकी सेवा ना करके स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, स्वयं भोक्ता बनना चाहते हैं, इसका परिणाम है हम कष्ट भुगत रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे एक पिता अपने बच्चे के प्रति करुणामय होता है, ऐसे ही हम सभी के परम पिता श्री कृष्ण अत्यंत करुणामय है और अपनी करुणावश यहां हमको अपने धाम वापस ले जाने के लिए आए हैं, न्योता देने आए हैं, मार्ग बताने आए हैं। यहां मत सड़ो इस भौतिक जगत में, दुखालय में, और उसका उपाय बता रहे हैं और बड़ा सरल उपाय है। अगर उनकी बात सुनते हैं तो, और यदि मनमानी करते हैं, अपने मन से बनाए कोई तरीका निकालते हैं इस कष्टों से, इस भौतिक संकल्प संसार के कष्टों का निवारण करने का, जैसा आजकल लोग करते हैं, हमारी हर सरकार, पूरे संसार की सब सरकारें प्लानिंग कमीशन बना बना के अलग अलग योजनाएं बना रही हैं, हमारे सब मिनिस्टर इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं, कोई अपनी अपनी सब प्लानिंग कर रहे हैं, हर परिवार का सदस्य अपनी प्लानिंग कर रहा है, अपने बच्चों की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सब प्लानिंग फेल हो रही है, सब प्लानिंग फेल होती है। कितनी भी हम प्लानिंग कर लें सुखी होने की, मिलता दुख है। हमारी प्लानिंग कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि हम प्रकृति के वशीभूत हैं, इसलिए कैसे सफल होगी, कठपुतली हैं हम। यदि हम चाहते हैं अपनी प्लानिंग सफल करना, तो हमें अपनी प्लानिंग को क्या करना होगा, भगवान की जो प्लानिंग है, भगवान की जो योजना है हमारे लिए, उस योजना को समझना होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि आप यहां मत सोड़ो, मेरे धाम आओ, और यहां धाम आने के लिए बहुत सरल है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, यदि आप उनको तत्वतः समझ लेते हैं कि वो कैसे हैं, मेरे को तत्वतः एज इट इज परफेक्टली समझ लेते हैं, तो आपको इस शरीर का त्याग करने के बाद दोबारा जन्म नहीं होगा। तो अनेक तपस्वीगण तपस्या करते हैं कठोर कठोर जंगल में जाकर के, अनेक विद्वानगण शास्त्रों का बड़ी गहराई से अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिकगण शोध कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिलेगी। शास्त्रों का आदेश है, सफलता केवल उसे मिलेगी जो श्री कृष्ण को तत्वतः समझ पाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन का यदि कोई एकमात्र हेतु है तो वो श्री कृष्ण को तत्वतः समझना है, अन्य सब चीजें गौण हैं। तो जन्माष्टमी पर्व है भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए एक जीवन में शुरुआत, या ऑलरेडी हम कर रहे हैं तो एक और कदम आगे बढ़ाएं। तो भगवान का जन्मदिन है, वो हमारा जैसा जन्मदिन नहीं होता है, इसलिए इसको दिव्य कहा गया है। हम लोगों का जन्म जो होता है वो प्रकृति के तीन गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से विवश होकर के हमें किसी न किसी मां के गर्भ में से जन्म लेना पड़ता है, और जन्म के समय में हम सब पूरी तरह से अबोध होते हैं, हम कौन हैं, क्या हैं, रोते रोते बैं बैं करते जन्म लेते हैं, कुछ पता नहीं होता क्या है, ABCD सब सिखाना पड़ता है, कुछ नहीं ज्ञात होता है, ऐसा हमारा जन्म है। और मरण भी ऐसे ही, मरने के समय में भी कहां जा रहे हैं कुछ पता नहीं होता है, अचानक एक दिन चले जाएंगे बस, अभी तक जो किया छोड़ जाएंगे अचानक। लेकिन भगवान का जन्म ऐसा नहीं है। भगवान बताते हैं भगवद गीता में, अजो हम अपि अव्यात्मा, अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वामदष्टव्य, अपनी स्वयं प्रकृति संभवामी आत्ममाया, अपनी स्वयं की माया शक्ति से भगवान आते हैं, वो बद्ध होकर के नहीं आते हैं बहिरंगा शक्ति जिस तरह से हम आते हैं। तो आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो कहां पर हुआ, जेल में हुआ। वसुदेव और देवकी कंस के द्वारा उनको बंदी बना के रखा गया था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि जो देवकी है, जो तेरी बहन है, इसी का आठवां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस ने सब बच्चों को मारना शुरू कर दिया था, तो इंतजार कर रहा था कि कभी अभी आठवां पुत्र का जन्म होगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है रात को मध्य रात्रि में, तो चतुर्भुज रूप में जन्म होता है भगवान का, उनके चार हाथ होते हैं और चारों हाथों में सब पूरा शरीर अलंकृत होता है, सर पे बहुत सुंदर मुकुट होता है, शंख चक्र गदा पद्मा धारण किए भगवान अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट होते हैं। आपने देखा है कभी किसी बच्चे का ऐसे जन्म होते हुए? बच्चे के ऊपर जो जन्म होता है तो सब मन लगा होता है, और यहां श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है, दिव्य आभूषण सब आच्छादित है, और फिर भी लोग बोलते हैं कृष्ण भी एक साधारण व्यक्ति था। आज तक हिस्ट्री में किसी साधारण व्यक्ति का जन्म ऐसे नहीं होते देखा, लेकिन जो ईर्ष्या करते हैं ये भगवान का जन्म, ये भगवान कृष्ण साधारण व्यक्ति है, कैसे साधारण? फिर देवकी और वसुदेव अभी चतुर्भुज रूप हैं, लेकिन भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते थे पहले जन्मों में, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और उनको डर भी होता है कि कंस आपको मारने आने वाला है, जानते हैं कृष्ण भगवान है, लेकिन वात्सल्य भाव है, इसलिए हृदय के अंदर एक अनुकंठ एक व्याकुलता है। तो भगवान अपने चतुर्भुज रूप से बच्चे का उद्धार करते हैं, जिससे कि वो अपने वात्सल्य भाव को प्रकट कर सकें, बच्चे के प्रति के भाव को प्रकट कर सकें। और उस समय जेल में जितने भी संतरी थे सब लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, और सब कुछ सब बेड़ियां वसुदेव की खुल जाती हैं, जेल के सब दरवाजे खुल जाते हैं अपने आप, किसी को नहीं पता लगता, और भगवान की प्रेरणा से वसुदेव उनको लेकर के वृंदावन की ओर जाते हैं, नंद बाबा यशोदा के यहां, क्योंकि यहां डर था इसलिए उनके यहां अलग जंगल में रहते थे वसुदेव वृंदावन में। तो बहुत बारिश हो रही, जैसे आज बारिश का मौसम है, ऐसे बहुत बारिश हो रही थी, और बीच में यमुना नदी को पार कर रहा था, तो यमुना नदी पूरी बहुत गहरी थी, उफान आया हुआ था, बहुत चौड़ी थी और बहुत तीव्र प्रवाह था। लेकिन जब वसुदेव वहां पहुंचते हैं तो यमुना जी उनको मार देती हैं, वसुदेव को श्री कृष्ण को ले जाने के लिए। सब तरफ बहुत कोलाहल है, बहुत तेज पानी है, लेकिन जहां वसुदेव चल रहे हैं वहां बिल्कुल शांत है पानी, क्योंकि यमुना जो है भगवान की सेविका है, तो वो भगवान को रास्ता देती है। तो देखिए उनकी दिव्यता। फिर आगे चल के हम जानते हैं वसुदेव के यहां भगवान को, वसुदेव नंद बाबा के यहां भगवान को रखते हैं, और एक जो पुत्री वहां जन्म हुआ था जिसका, उसको लेके आते हैं, और जब कंस उनको मारने आता है तो वो फिर बोलते हैं कि जिसको मार, जो तुमको मारने वाला है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरह से भगवान का जन्म दिव्य है, और भगवान के जो कर्म है वो भी दिव्य है। नमाम कर्माणि निम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान कहते हैं मैं अपने कर्म बंधन में बनता नहीं हूं, हम सब लोग बनते हैं, जो हम कर्म करते हैं उसका हमको एक प्रतिफल भुगतना पड़ता है, हमको विवश होना पड़ता है उस प्रतिफल के अनुरूप एक शरीर को धारण करने के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं मैं कर्म के फलों में नहीं बनता हूं। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान ने इतना सब ये वध करवाया तो भगवान आज जो है वो नरक में हैं, कितने मूर्ख। ऐसे दिव्य भगवान जिनके वशीभूत है प्रकृति, वो नियम उनके ऊपर लागू होंगे, जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होते। नमाम कर्माणि निम्पन्ति, भगवान को योगेश्वर कहा गया है, भगवान के सभी कर्म, तो वो किसी एक योगी की तरह से भगवान ने योग साधना नहीं की, योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए, भगवान योगेश्वर हैं, सभी योग सिद्धियां तो उनकी सेविका हैं। 9 महीने के जब थे तब पूतना वध किए, 9 महीने का कोई हमने देखा है कोई बच्चा छोटा ऐसा काम कर सके? पूतना जब उसका मरण हुआ, कितना मील लंबा तो उसका शरीर था, बड़ी भयावह उसका शरीर था, और बड़ी बहुत बड़ी राक्षसनी थी वो, लेकिन भगवान ने उसको ऐसे मार दिया ऐसे, और एक नहीं हर दिन का काम था उनको, खेल खेल में मारते थे असुरों को। तो भगवान जब यहां स्वयं आए हैं तो शास्त्रों में तो वचन था ही पहले से कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य है, लेकिन स्वयं दिखा रहे हैं कि देखो मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, हमारी और तुम आपकी तरह नहीं है, तो यदि हम भगवान की दिव्यता को स्वीकार कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर हमारा कोई जन्म नहीं होगा दोबारा से, हमारा भी भगवत धाम जाएंगे, नित्य भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को समझना आसान नहीं। भागवत में बताया गया है, मुह्यंति यत सूरयः, ब्रह्मा जैसे से देवतागण भी जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया है, उपसृजन किया है, सेकेंडरी क्रिएशन, वो भी मोहित हो जाते हैं, वो भी समझ नहीं पाते हैं भगवान को। सरल नहीं है कृष्ण को समझना, प्रयास तो कई लोग करते हैं लेकिन तत्वतः नहीं समझ पाते हैं, परफेक्टली नहीं समझ पाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी नहीं समझ पाता हूं, दशम स्कंद में ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं तो आपको बहुत थोड़ा बहुत जानता हूं। तो जब भगवान लीला कर रहे थे व्रज में, तो ब्रह्मा जी सोचे छोटा सा बच्चा भगवान, तो कह रहे ये कैसे भगवान है, तो टेस्ट किया उनका, परीक्षा लिया, सब ग्वालों को, उनके दोस्तों को और उनकी सब गैयाओं को चुरा लिया और गुफा में डाल दिया। और फिर जब छोड़ के वापिस आए तो देखा सब वैसे का वैसे ही है, भगवान कृष्ण के साथ सभी उनके गोप कुमार, सब गैया, सब वैसे के वैसे। तो उनको आश्चर्य हुआ कि गुफा में रख के आए, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ कंफ्यूजन हो गया और रखे नहीं आया हूं, दोबारे चेक करने के देखने के लिए कि रखे तो आया हूं, देखा वो तो वही है गुफा में ही है, लेकिन फिर भी यहां पर भी उपस्थित है। फिर भगवान ने उनको दर्शन कराया कि ये सब भगवान ने अपना विस्तार कर लिया, सब गैयाओं में, सब में अपना विस्तार कर लिया, सब बन गए ऐसे एज इट इज। फिर ब्रह्मा जी की बुद्धि ठिकाने आई कि ये कौन है, ये साधारण दिखता है, छोटा सा बच्चा दिखता है, मक्खन चोर करता है और लगता है साधारण व्यक्ति है, लेकिन साधारण नहीं है, असाधारण है। इसलिए कहा गया है अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया सेवोन मुख्य जीवाद स्वयं एवं सूर्त आधा। भगवान को समझने का एक तरीका है, जब तक वो तरीके को नहीं अपनाएंगे तब तक कोई नहीं समझ सकता है। वो तरीका क्या है कि भगवान स्वयं अपने को हमारे समक्ष प्रकट करेंगे जब हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे। हम अपनी इंद्रियों से बलपूर्वक कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां क्षीण हैं, अपूर्ण हैं। जैसे 3 फीट कुएं में रहने वाला मेंढक कभी नहीं जान सकता प्रशांत महासागर के विषय में कि प्रशांत महासागर का मतलब क्या है, चाहे वो अपनी बुद्धि को कितना भी दौड़ा ले, कितनी भी थ्योरी लिख ले, कितनी भी हाइपोथेसिस लिख ले, लेकिन मेंढक के शरीर में उसकी समझने की बुद्धि मेंढक जितनी है। उसी प्रकार से मनुष्य देह में हमारी मनुष्य जैसी बुद्धि है, मनुष्य जैसी इंद्रियां हैं, लेकिन भगवान मनुष्य की बुद्धि के द्वारा ग्राह्य नहीं है, भगवान असीमित हैं। इसलिए भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। भगवान स्वयं किसी को अपने को प्रकट करना चाहें तो कर सकते हैं, हम जबरदस्ती भगवान को नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो भगवद्गीता अध्ययन करते हैं, श्लोक सब याद कर लेते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, टिप्पणियां लिखते हैं, विवेचना लिखते हैं, लेकिन नहीं समझते। उदाहरण लीजिए, कई बड़े बड़े दार्शनिक हैं और भारत में बहुत आए, सभी लोग ये समझते हैं कि कृष्ण है, कृष्ण आए थे, लेकिन कृष्ण भगवान है, लेकिन कैसे भगवान है कि वो जो परम सत्य निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई गुण नहीं है, वो जब एक शरीर धारण करता है उसे कृष्ण कहते हैं, उसे राम कहते हैं। निराकार ब्रह्म परम है और कृष्ण जो है उसमें से उसका एक रूप है जो एक देह धारण करके आता है, जिसका एक जन्म होता है, जैसे हमारा होता है, जैसे स्थूल देह हमारा है जिसका मरण होता है, ऐसे कृष्ण का भी एक रूप था, शरीर था, उनका भी ऐसे ही जन्म हुआ, उनका ऐसे मरण हुआ। हाँ, वो बड़े आदमी थे, महापुरुष थे। अगर वो महापुरुष भी थे तो महापुरुष क्या कह रहे हैं वो तो सुनिए। वो खुद महापुरुष कह रहे हैं कि ये जो मेरा शरीर है वो आप और मेरे जैसा नहीं है। अजोपी सन अव्यय आत्मा, मेरा शरीर अव्यय है, उसका वो कभी क्षय नहीं होता है। हम सब बूढ़े होते हैं, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भगवान उस समय 125 वर्ष ऑलरेडी भू पर थे, लेकिन नव यौवनम, बिल्कुल जवान व्यक्ति की तरह, बुढ़ापा नहीं हुआ उनको कभी। और जो उनका तथाकथित मरण है, स शरीर भगवान अपने धाम गए, केवल ड्रामे की तरह से एक योजना बनाई। तो साधारण लोग ऐसा सोचते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान जो है वो क्या है, कृष्ण क्या है, निराकार में से आए। ऐसे लोग कभी भी भगवत धाम नहीं जाएंगे, ऐसे लोग कभी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो तत्वता नहीं जानते हैं भगवान को। तत्वता जानने के लिए भगवान से सुनना होगा, मैं आसक्त मन अपार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् श्रुणु। अगर मेरे बारे में जानना है तो मुझसे सुनो, भगवान कहते हैं। फ्रॉइड से या डार्विन से या आजकल किसी भी दार्शनिक से या किसी और तथा कहीं धार्मिक गुरु से सुनने नहीं, भगवान श्री कृष्ण से सुनो। या भगवान श्री कृष्ण का जो गुरु शिष्य परंपरा में उनका भक्त है, जो भगवान का सेवक है, उनसे सुनो, तो हम भगवान को यथारूप समझ सकते हैं। जैसे अर्जुन ने समझा, भगवान बताए भगवद गीता में कि अर्जुन तुम इस ज्ञान को समझ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, रहस्यम है अन्यथा ये, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो भगवान अपने विषय में बताते हैं उसको, या भगवान श्री कृष्ण को समझ सकता है वो जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का सेवक है, जो भगवान की सेवा करना चाहता है, न कि भगवान को मार करके खुद भगवान बनना चाहता है। हम सब भगवान बन सकते हैं, वो भगवान को मारना चाहता है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, वो कभी भगवान श्री कृष्ण को यथारूप नहीं समझ पाएगा। तो भगवान को समझने के लिए योग्यता चाहिए। अगर आपकी आंखों में मोतिया है, मोतिया की बीमारी है, तो आपको स्वाभाविक है नहीं दिखेगा। उपाय क्या है देखने का, पहले मोतिया का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मोतिया निकलवाना पड़ेगा, तब देख सकते हैं। तो वर्तमान में अपूर्ण इंद्रियों को हम लेके बैठे हैं, जब तक उनको शुद्ध नहीं करेंगे तब तक भगवान को नहीं देख सकते हैं, भगवान को नहीं समझ सकते। और शुद्धिकरण का तरीका भगवान बता रहे हैं, सेवोन मुख ही जीवादौ स्वयं एव सूर्त अदः। जो मेरी सेवा करता है वो शुद्ध हो जाता है और फिर लायक बनता है मुझे समझने के लिए, मुझे देखने के लिए। इसलिए हमें आवश्यकता है अपने को शुद्ध करने की, और शुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र उपाय है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी संपत्ति को, जो भी हमारे पास है उसे भगवान के संबंधित करना। भगवान परम पवित्र है, परम धाम, भगवान के बारे में बताया है श्री कृष्ण अर्जुन, परम पवित्रम। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब भगवान पवित्र है, उनके संपर्क में आने से हम स्वयं पवित्र हो जाते हैं और योग्य होते हैं भगवान को समझने के। तो फिर सेवा कैसे करें भगवान की, जिह्वा दो, जिह्वा से प्रारंभ होती है भगवान की सेवा। जिह्वा के दो कार्य हैं, एक है रसास्वादन, दूसरा है शब्द उच्चारण। ये दोनों कार्यों से हम भगवान की सेवा करें, यानी रसास्वादन यानी केवल कृष्ण प्रसाद खाएं, और शब्द उच्चारण यानी केवल कृष्ण नाम या कृष्ण कथा का गान करें। तो इससे हमारी जिह्वा शुद्ध होगी, और जिह्वा के शुद्ध होने से धीरे धीरे अन्य सभी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, और फिर हम योग्य हो पाएंगे श्री कृष्ण को तत्वतः समझने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनावृत आंदोलन इसी कार्य में सबको प्रेरित करने के लिए है। इसलिए आप देखिए हमेशा क्या होता है, जब भी आप मंदिर में आते हैं क्या गान सुनते हैं आप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम हरे। ये साधारण चीज नहीं है, गोलोकेर प्रेम धना, ये भगवान का नाम हम सबको शुद्ध करने वाला है। इसमें सब शक्ति है भगवान की, और कितना सरल है भगवान का नाम लेना, कहीं भी किसी भी अवस्था में कोई भी नाम ले सकता है। तो फिर क्यों ना इस महत्वपूर्ण अवसर को अपनाया जाए, ट्राई कीजिए। आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के दिन से एक नियम लीजिए कि आज से प्रतिदिन हरे कृष्ण मंत्र की कम से कम एक माला करेंगे, कम से कम एक, अधिक करें और अच्छा है, चार कीजिए, आठ कीजिए, सोलह कीजिए, बत्तीस कीजिए, जितनी कर सके अच्छा, लेकिन कम से कम एक शुरू कीजिए आज, और खुद परिणाम देखिए कि आपका हृदय अंतकरण कैसे शुद्ध हो रहा है, काम क्रोध लोभ मोह सब चिंताएं भौतिक चिंताएं कैसे जा रही हैं, छू मंत्र हो जाएंगी भौतिक इच्छाएं, हम गारंटी दे सकते हैं आपको, करके देखिए आप, आपकी जितनी चिंताएं हैं भौतिक सब समाप्त हो जाएंगी। ये दिखाता है कि कैसे दिव्य है भगवान का नाम, आप करके देखिए, कोई चिंता नहीं रही, छू मंत्र हो जाएंगे। और दूसरा कार्य क्या है, केवल कृष्ण प्रसाद दीजिए, भगवान को भोग धराइए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं जो पत्र पुष्प फल शाकाहारी ये सब चीजों को भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद हो जाता है वो उसको खाइए। ये सब विज्ञान है, आपके समय में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप इसको करके प्रैक्टिकल देख लीजिए इसका रिजल्ट क्या होता है, और समझने के लिए भगवद गीता पढ़िए क्या कैसे होता है, क्या क्या विज्ञान है इसके पीछे। केवल ये दो चीजें प्रारंभ कीजिए आज जन्माष्टमी से, ये नियम लीजिए घर में जो भी बनाएंगे भगवान को अर्पित करें, और भगवान को अर्पित करने के लिए कंडीशन एक ये है कि भगवान जो चाहते हैं वो अर्पित करना पड़ेगा। भगवान को आप सभी शाकाहारी चीजें कर सकते हैं, मांस मच्छी अंडा इत्यादि नहीं कर सकते, चाय भी नहीं कर सकते, चाय कॉफी और ये प्याज लहसुन नहीं कर सकते। तो ऐसे भगवान को रोज भोग लगाइए, आप खाने की इच्छा अच्छे अच्छे व्यंजन, खूब अच्छे व्यंजन पकाइए कृष्ण के लिए, कृष्ण को भोग लगाइए और उसको प्रसाद रूप में लीजिए और देखिए परिणाम क्या होता है। आप पहला परिणाम पाएंगे, आपका शुद्धि होगा, भौतिक कलमश सब खत्म, भौतिक चिंताएं सब खत्म हो जाएंगी आप। फिर धीरे धीरे जब आप प्रगति करेंगे, धीरे धीरे भगवद्गीता पढ़ेंगे, आगे भागवतम पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे भगवान कृष्ण आप समझेंगे धीरे, और जैसे समझेंगे वैसे वैसे आपका जीवन बहुत सुंदर आनंदमय होता जाएगा। और यदि इस तरह से पूरा जीवन भगवान को समझने में व्यतीत करेंगे तो भगवान गारंटी देते हैं कि इस प्रकार से जो व्यक्ति मेरे को तत्वतः समझता है, सिंसियरली हृदय से प्रयासरत है, चाहे बूढ़े हैं कोई बात नहीं, अभी से शुरू कीजिए, भगवान आपकी सिंसियरिटी गंभीरता को देख रहे हैं। यदि आप गंभीर हैं तो भगवान आपको निश्चित रूप से भगवत धाम ले जाएंगे। तो दोबारा यहां मत आइए, भगवान हमारे परम मित्र हैं, दोबारा इस जंजाल में मत आइए, कलयुग बहुत खराब आ रहा है वैसे भी, और कृपया अपने इस जीवन को अंतिम जीवन बनाइए, धाम वापस चलिए। यही हमारे इस आंदोलन का एकमात्र हेतु है कि श्री कृष्ण की जो पुकार है, श्री कृष्ण का जो अवतरण का कार्य है, हम सबको अपने धाम बुलाने आए हैं, वापस चलो। तो उसको गंभीरता से लीजिए, हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए, भगवद गीता पढ़िए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। हरे कृष्ण। कोई किसी का प्रश्न है, एक दो प्रश्न ले सकते हैं यदि किसी का कोई प्रश्न है तो। ऑडियंस के ऊपर लाइट आ सकता है, एक मिनट के लिए। कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ आगे कार्यक्रम होंगे, ड्रामा इत्यादि, और फिर अभिषेक होगा, तो आप सब लोग उसमें भाग लीजिए। हरे कृष्ण। हरिदास ठाकुर के एक महान भक्त के विषय में सुनिए, हरि नाम की महिमा के विषय में देखिए अभी वीडियो, और उसके बाद ड्रामा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। ओके।